तो इस प्रकार से भगवान शोक कर रहे हैं। इसी बीच में कृष्ण बलराम के न रहने पर द्वारका में क्या हुआ, सद्धन्वा ने श्री कृष्ण के ससुर तथा सत्यभामा के पिता सत्रजित को रात्रि के समय सोते हुए मार डाला। तब सत्यभामा ने द्वारका से हस्तिनापुर में आकर श्री कृष्ण को यह अप्रिय समाचार सुनाया। तो एक शोक तो यहां था हस्तिनापुर में है? और सत्यभामा द्वारका से आकर के हस्तिनापुर में एक दूसरा शोक समाचार देती हैं, क्या उनके पिता को सद्धन्वा ने मार डाला। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, जब श्री कृष्ण तथा बलराम ने यह समाचार सुना तो उन्होंने मानव समाज की रीति का अनुसरण करते हुए शोक प्रकट किया तथा ये कहते हुए कि हमारे लिए अत्यंत कष्ट की बात है, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। भागवत 10:57। कर्तव्य है जिसने साल्व ने युद्ध स्थल में श्री कृष्ण के समक्ष अपनी माया से वसुदेव जी को दिखाया तथा उनका सिर काट दिया। वो कृष्ण को मूर्ख बनाने के लिए माया से कृष्ण के पिता बना दिया और उनका सिर काट दिया वसुदेव जी का। तो श्री कृष्ण एक मुहूर्त यानी 48 मिनट तक सामान्य मनुष्यों की मुद्रा में शोक करते रहे, युद्ध भूमि में ही कृष्ण शोक करते रहे। मेरे पिता को इसने मार डाला, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। 48 मिनट तक कृष्ण शोक करते रहे, यद्यपि वे जानते थे ये साल्व की माया थी। इन कर्तव्य है, पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता की मृत्यु पर शोक करे। विशेष रूप से जिस पिता ने जो ना मतलब भगवान की पूरी भक्ति की है ना, ये भगवान की भक्ति सिखाते हैं जो पिता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन बातों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी श्री कृष्ण मानव समाज की रीति के अनुसार इन बातों के लिए शोक करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन पर दोष क्यों लगा रहे हैं कि वे उनके लिए शोक कर रहे हैं जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, अशोच्यानन्व शोचस त्वम अनुशोचः त्वम अनु अशोचः, का अर्थ हुआ बारम्बार शोक करना। इसका अर्थ हुआ किस विषय में अर्जुन बारम्बार शोक कर रहे हैं। इस श्लोक के अंत में भी श्री कृष्ण के शब्द हैं, नानुशोचन्ति पंडिता पंडिता न अनुशोचन्ति, अर्थात पंडितगण बारम्बार शोक नहीं करते। इस प्रकार इस श्लोक में अनु शब्द का दो बार प्रयोग करके श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि अर्जुन को आवश्यकता से अधिक शोक नहीं करना चाहिए। शोक तो करना चाहिए लेकिन आवश्यकता से ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। अनुशोच का मतलब यह है बार बार शोक कर रहे हो। अब हम कुछ ऐसे उदाहरणों पर विचार करेंगे जिनमें व्यक्ति को शोक करना उचित है। पहला, कपिल देव की शिक्षा। श्रीमद् भागवत 3:31-34 में कपिल भगवान कहते हैं, व्यक्ति को ऐसे मूर्खों का संग नहीं करना चाहिए जो अशांत हैं, आत्मज्ञान से रहित हैं तथा स्त्रियों के हाथ में नाचने वाले बंदर के समान हैं। ऐसे मूर्ख शोक करने के योग्य हैं। शोक करना चाहिए किसके लिए? ऐसे मूर्खों के लिए है? तो यहां पर कपिल भगवान सोचेसु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वास्तव में शोक करने का विषय यह है कि मूर्ख लोग श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर स्त्री की सेवा में लगे रहकर अत्यंत कष्ट तथा बंधन प्राप्त करते हैं। यह शोक करने का विषय। अच्छा, दूसरा, प्रहलाद महाराज का शोक। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज भगवान नृसिंह देव से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, आप प्रहलाद महाराज देखिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान नरसिंह देव से, हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं नरक में जाने से भयभीत नहीं हूं क्योंकि आपके गुणगान रूपी अमृत में मेरा चित्त सदा डूबा रहता है, परंतु मैं उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए शोक कर रहा हूं जो भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के लिए माया की सेवा में बड़े भारी बोझ ढो रहे हैं, इनके लिए शोक कर रहा हूं। प्रहलाद महाराज साक्षात भगवान के सामने ये बात बोल रहे हैं कि मैं उनके लिए शोक कर रहा हूं। सोचे ततो विमुख चेत इंद्रियार्थ है माया सुखाय भरम उद्भवतो विमूढान, भागवत 7:43। तो यहां पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, सोचे ततो विमुख चेत, अर्थात हे भगवान, मैं उन मूर्खों के लिए शोक कर रहा हूं जिनका चित्त आपसे विमुख है। इस प्रकार हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस व्यक्ति का चित्त श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगता उसे अपने लिए शोक करना चाहिए, तथा जिस व्यक्ति का चित्त श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है उसे उन मूर्खों के लिए शोक करना चाहिए जो श्री कृष्ण से विमुख हैं। तीसरा, माधाई का शोक। माधाई जानते कौन है? जगाई माधाई का नाम सुना है? जगाई माधाई है? सुना है? चैतन्य भागवत में वर्णन है कि माधाई नामक अत्यंत पापी शराबी ने जब नित्यानंद प्रभु के सिर में शराब की सुराही मार दी तो उनके सिर से खून बहने लगा। नित्यानंद प्रभु यहाँ है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु यहाँ है। बाद में जब उसकी चेतना पवित्र हो गई तो वह अपने इस कर्म के प्रति अत्यंत शोक करने लगा। उसने नित्यानंद प्रभु से कहा, आपका शरीर परम कोमल है जिस पर श्री कृष्ण शयन और विहार करते हैं। हाँ, बहुत कोमल है, मतलब शेष जी है ना, जिस पर श्री कृष्ण शयन करते हैं और विहार करते हैं। आप कैसे शरीर पर मैंने प्रहार किया, अतः मुझ जैसा घोर पापी और कोई नहीं है। शोक कर रहे हैं ना, मत आइए तो शोक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए शोक ऐसा? हाँ, जिसका स्मरण करने से सब बंधन टूट जाते हैं, ऐसे आपके शरीर से मैंने रक्त बहाया जिससे विरोध करके जरासंध का नाश हुआ, ऐसे आपसे विरोध करके मेरी कुशलता कैसे हो सकती है? मुझ जैसे घोर पापी को किस लोक में ठौर मिलेगी? इस प्रकार कहते हुए माधाई नित्यानंद के चरणों को अपनी छाती पर धारण करके वहीं पड़ा ही रह गया। नित्यानंद प्रभु के पैरों को अपनी छाती में रख करके और पड़ा रहा। अब चौथा है रुक्मिणी जी का शोक। जिस समय रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था उस समय उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा श्री कृष्ण को द्वारका में अपना गुप्त संदेश भेजा कि श्री कृष्ण शीघ्र ही कुंडिनपुर में जा आकर उनका अपहरण कर लें। रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा अत्यंत उत्सुकता पूर्वक कर रही थी, परंतु जब उन्होंने ब्राह्मण को वापस आया हुआ नहीं देखा तो वे शोक करने लगी। शोक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए रुक्मिणी जी को? हाय, रात बीत जाने पर मेरा विवाह होने वाला है, मैं कितनी अभागिनी हूं, कमल नेत्र श्री कृष्ण अभी तक नहीं आए, यहां तक कि ब्राह्मण दूध भी अभी तक नहीं लौटा। ऐसा लगता है कि निर्दोष प्रभु ने मुझ में कुछ दोष देखा है, इसलिए वे मेरा पाणी ग्रहण करने नहीं आए। मुझे अभागिनी के ऊपर न तो ब्रह्मा जी ही प्रसन्न है, न शिव जी और न पार्वती ही प्रसन्न है। इस प्रकार शोक करती हुई रुक्मिणी ने अपने आंसू से भरे हुए नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, पांचवा, श्री कृष्ण के विरह में अर्जुन का शोक। जिस समय श्री कृष्ण अपने परम धाम चले गए उस समय अर्जुन ने द्वारका से लौटकर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज से शोक करते हुए कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। जिनके एक क्षण के वियोग से ही संपूर्ण जगत सूना दिखाई देता है, उन श्री कृष्ण से मैं सदा के लिए दूर हो गया हूँ। श्री कृष्ण के बिना मेरा जीवन उसी तरह व्यर्थ है जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर व्यर्थ हो जाता है। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वप्रिय शुभ चिंतक भगवान से विलग हो गया हूँ, अतः मेरा हृदय शून्य सा प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार हमने अभी तक ये चर्चा की कि शोक कहाँ पर करना, शोक कहाँ पर कितना करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं, प्रज्ञावादान से भासते, अर्थात तुम पांडित्य पूर्ण वचन कह रहे हो। इस बात से भगवान अर्जुन को ये बतलाना चाहते हैं कि अर्जुन अपने को जितना अधिक बुद्धिमान समझते हैं उतने अधिक वे बुद्धिमान नहीं है। भगवान स्वयं जब शिष्य बनने की लीला करते हैं तो वे भी अपने आप को अपने गुरु के समक्ष मूर्ख समझते हैं। इस संबंध में श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के सातवें अध्याय में एक घटना है, जिसमें जब प्रकाशानंद सरस्वती नामक मायावादी सन्यासी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि वे वेदांत सूत्र का अध्ययन न करके भावुकों के समान कीर्तन और नृत्य क्यों करते हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मान्यवर इसका कारण सुनिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर ही मुझे दंडित किया। उन्होंने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के लायक नहीं हो, अतएव तुम कृष्ण नाम का सदैव कीर्तन करो। भगवान देखो स्वयं कितने विनम्र हैं, शिष्य का कर्तव्य बताते हैं। शिष्य को जो ना अपने को कितना मूर्ख समझना चाहिए गुरु के सामने कि मेरे गुरु महाराज ने डांटा मुझे। ये समस्त मंत्रों का सार है, मेरे गुरु महाराज ने डांटा कि तुम वेदांत सूत्र पढ़ने लायक नहीं हो, तुम कृष्ण के नाम का कीर्तन किया करो, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने लिए नहीं कहा, वैसे कहते रहे वैसे अपने को कि मेरे गुरु ने डांटा, लेकिन वास्तव में ये बात उनके लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए है। हम लोग योग्य नहीं है वेदांत सूत्र पढ़ने के। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, श्री चैतन्य ने अपने को प्रथम श्रेणी के मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया। जो मूर्ख हैं वे ही गुरु की सेवा को छोड़कर अपने को आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रणी मानते हैं। ऐसे मूर्खों को रोकने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया। गुरु भली भांति जानता है कि शिष्य को किस विशेष कार्य में लगाया जाए, किंतु यदि शिष्य अपने को गुरु से अधिक अग्रसर मानकर उसके आदेश को ना मानकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है तो वह अपने हाथों अपनी आध्यात्मिक प्रगति रोक देता है। हर शिष्य को अपने को कृष्ण विज्ञान से अनभिज्ञ मानना चाहिए और कृष्ण भावना में दक्ष होने के लिए गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए सदैव उद्यत रहना चाहिए। शिष्य को अपने गुरु के समक्ष सदैव मूर्ख बने रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर जो आक्षेप किया है कि वे पांडित्य पूर्ण वचन कह रहे हैं, ये बात उन मूर्खों के लिए एक संकेत है जो बिना सोचे समझे या प्रामाणिक गुरु परंपरा से विधिवत ज्ञान ना प्राप्त करके जनता को ठगने या गुमराह करने के लिए प्रवचन देते रहते हैं। उनके वचन अत्यंत पांडित्यपूर्ण होते हैं तथा अपने प्रवचनों में वे शास्त्रों के अनेक श्लोकों का उच्चारण भी करते हैं, परंतु वास्तव में तो वे शास्त्रों का निष्कर्ष जो श्री कृष्ण की शरणागति है उसे नहीं जानते। ऐसे मूर्ख जो पंडित बनने के लिए अनेक शास्त्रों का अभ्यास करते हैं तथा श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, उनके लिए शंकराचार्य ने एक श्लोक लिखा है। क्या? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते डोंगृं करणे। अर्थात हे मूर्ख, तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर और सदा गोविंद का ही भजन कर। जिस समय मृत्यु का निश्चित काल आएगा उस समय व्याकरण के नियम तेरी रक्षा नहीं करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार से पूर्व नवद्वीप में पंडितों की कोई गिनती नहीं थी ना, वे वहां लाख लाख करोड़ करोड़ की संख्या में थे पंडित, परंतु वे सभी कृष्ण नाम तथा भक्ति से शून्य थे। फिर क्या पंडित? इसलिए भक्तगण श्री कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि श्री कृष्ण शीघ्र ही अवतार लेकर इन सब का उद्धार करें। जिस समय चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित को देखा कि वो अपने शिष्यों को श्री भागवत की भक्ति रहित व्याख्या सुना रहा था, तो वे अत्यंत कुपित होकर बोले, ये पंडित होकर भी कैसा अर्थ बता रहा है? भागवत में भक्ति के अतिरिक्त जो और कुछ बताता है वो अधम कुछ भी नहीं जानता, यह पंडित निरंतर भक्तिहीन व्याख्या करता जा रहा है। इस घटना के पूर्व एक बार श्रीवास ठाकुर देवानंद की भागवत कक्षा भागवत कथा सुनने के लिए गए तथा उसके असली अर्थ को समझकर भक्ति के रस में रोने लगे। उनकी भक्ति भावना को ना समझकर देवानंद पंडित के शिष्यों ने श्रीवास ठाकुर को खींचकर बाहर निकाल दिया। इस कारण भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित को महान अपराधी मान लिया था। तो मतलब पंडित ये ऐसे पंडित नहीं है, कहलाते हैं पंडित लेकिन पंडित नहीं है। जो भगवान के नाम में भगवान के भक्तों में कोई श्रद्धा नहीं रखते हैं तो कैसे पंडित हैं ये। इसके बाद भगवान कहते हैं, गतासून अगतासून चा, अर्थात पंडित जन ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। गतासून का अर्थ है मरने के बाद तथा अगतासून का अर्थ है मरने के पूर्व। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ना तो मृत्यु के पूर्व और ना ही मृत्यु के बाद विद्वान शोक करते हैं। जिस प्रकार अर्जुन एकत्रित योद्धाओं की मृत्यु के पूर्व शोक कर रहे हैं, उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज युद्ध में योद्धाओं की मृत्यु के बाद शोक करने लगे। हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। मैंने अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। मैंने अनेक बालकों, मित्रों, चाचाओं, शिक्षकों तथा भाइयों का वध कराया है। इन पापों के कारण नरक से मैं कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं नानु शोचन्ति पंडिता, अर्थात पंडित जन शोक नहीं करते हैं। यहाँ पर दो प्रकार का शोक किया जा रहा है, पहला अपने स्वजनों की मृत्यु का शोक और दूसरा पाप से बंधने का शोक। अर्जुन दो प्रकार का शोक कर रहे हैं। तो भगवान का कहना है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वे अपने स्वजनों की मृत्यु का थोड़ा शोक अवश्य करते हैं, परंतु पाप में बंधने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनके संपूर्ण कर्म श्री कृष्ण को समर्पित होते हैं, इसलिए उन्हें पाप में बंधने का शोक तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? उनका प्रश्न है कि अर्जुन जो शोक कर रहे हैं अपने स्वजनों की मृत्यु का, तो अर्जुन तो इतने ज्ञानी थे और भगवान कृष्ण के साथ रहते थे, तो भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण तो उनकी मुक्ति हो गई, तो फिर अर्जुन क्यों शोक कर रहे हैं? ये भगवत गीता का जो रहस्य है वो यही है कि भगवान भगवत गीता अर्जुन को नहीं सुना रहे हैं, वास्तव में भगवान भगवत गीता हमको सुना रहे हैं, लेकिन अर्जुन को भगवान ने निमित्त बनाया है ना। तो अर्जुन के ज्ञान को ढक दिया अपनी योग माया के द्वारा है ना। अर्जुन इस प्रकार से शोक कर रहे हैं ना। तो ये जो है मतलब वास्तव में भगवत गीता अर्जुन के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए है ना। तो भगवान ये दिखाते हैं भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा कैसे आप शोक से मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन जिस प्रकार शोक से मुक्त हुए उसी प्रकार आप भी शोक से मुक्त हो सकते हो है ना। तो उसी प्रकार से है जैसे कि कोई व्यक्ति साबुन का विज्ञापन करता है ना। तो साबुन से जो ना कपड़ा साफ होता है, तो वो दिखाता है कपड़ा साफ करके कि देखो कितना अच्छा साबुन है, कपड़ा साफ होता है। तो अपने ही कपड़े को वो खूब गंदा कर देता है और फिर उसको धो करके दिखाता है कि देखो कितना साफ हो गया है नहीं। उसी प्रकार से भगवान भी भगवद गीता का चूंकि विज्ञापन करना चाहते हैं कि भगवद गीता से आप अपने जो ना हृदय को स्वच्छ कर सकते हो, तो अर्जुन को अर्जुन के हृदय को भगवान ने खूब गंदा कर दिया, चेतना को है ना, शोक है ना, मोह सब भरा हुआ है, और फिर गीता का ज्ञान देकर के शुद्ध कर दिया है ना, और फिर दिखलाया कि देखो है इतना जो ना चेतना वो थी, दोषित थी, शोक में थी, और देखो गीता के ज्ञान से हमने साफ कर दिया है, लो ये है भगवद गीता है ना। भगवद गीता का भगवान इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपनी शिक्षाओं का उन्होंने अर्जुन के हृदय को जो है कर दिया इस प्रकार से शोक मग्न कर दिया, अज्ञान में डाल दिया है ना। तो ये जो ना एक विज्ञापन की विधि है। और कोई प्रश्न? उनका प्रश्न है कि गुरु के आगे मूर्ख हमेशा बने रहना चाहिए, इसका मतलब क्या है? रूपा जी ने बताया है कि अगर आप गुरु के आगे हमेशा मूर्ख रहते हैं तो ये जो है बंधन से छूटने का उपाय है, एकमात्र ही उपाय है बंधन से छूटने का, अगर आप गुरु के आगे अपने को मूर्ख समझते हो। अगर अपने को आप गुरु के आगे बहुत योग्य समझते हैं है? और अब कोई जरूरत नहीं है मैं तो कृष्ण से अब डायरेक्ट संबंध जोड़ूंगा है ना, तो वहीं पर ही जो है फिर कृष्ण रूठ जाते हैं। मतलब कहने का है कि जिस भक्ति की सहायता से हम पहले आगे बढ़े हैं और हमें सहारा मिला है ना, अब हम जो है उसको छोड़ देते हैं है? और ऐसे कहते हैं ऐसे अकड़ते हैं उसके सामने, तो भगवान जो है कभी सहन नहीं करते हैं इस बात को है ना। हमेशा वो बड़ा है आप में से, क्योंकि पहले जब हम कुछ ABCD भी नहीं जानते थे तो उसने भक्ति में ABCD सिखाई उस गुरु ने, तो हमसे वो हमेशा बड़ा है, ये समझना चाहिए। ये शिष्टाचार है, ये इनका प्रश्न है कि कुछ लोग हैं जो यहाँ से छोड़ करके दूसरे गुरुओं के पास चले गए तो उनका कभी पतन नहीं हुआ। हाँ, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अगर वे जो है एक गुरु को छोड़कर के दूसरे गुरु को ग्रहण करते हैं तो एक तो अच्छा ही है कि वे जो है ना इस रास्ते में चल रहे हैं, तो एक तो गुण ये है उनका। लेकिन एक दोष ये है कि एक गुरु को छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण भी हो सकते हैं। अगर कोई मरीज है वो अपना इलाज करा रहा है ना, और किसी कारण से अगर डॉक्टर योग्य भी है, कोई डॉक्टर जो है ना योग्य भी है, लेकिन किसी कारण से अगर उसका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है, या मान लीजिए कि डॉक्टर ही देखभाल नहीं कर पा रहा है ठीक से, उसके पास भी ठीक से समय नहीं मिल पा रहा है ना, तो ये ठीक से वो संपर्क हो नहीं पा रहा है उस प्रकार से, है ना। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई मरीज है वो दूसरे डॉक्टर के पास अपना इलाज कराता है तो उसका फिर दोष नहीं माना जाता। तो यहाँ पर कई कारण हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है ना किसी गुरु को छोड़ता है, तो क्योंकि जैसे कोई मरीज है किसी डॉक्टर को छोड़ता है तो उसके पीछे जो ना ये कारण भी हो सकता है कि उसे ठीक से मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, है ना। कभी कभी डॉक्टर भूल जाता है उसको बताना कि भाई तुम्हें ये चीज नहीं खानी है, और डॉक्टर की भूल से मरीज जो है वो चीज खाता रहता है और दवाई भी ले रहा है, लेकिन उसका मतलब रोग दूर नहीं हो रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो कुछ लोग जो है ना अगर सच्चे दिल के हैं, जो कि अपनी बीमारी दूर करना चाहते हैं, भाव रोग की बीमारी दूर करना चाहते हैं, तो जो है भगवान उनको फिर मार्गदर्शन देते हैं, और किसी कारण से एक गुरु से वो दूसरे गुरु के पास अगर जाता है तो उसको दोष नहीं लगता है। लेकिन उसके हृदय में अगर सचमुच ये इच्छा है कि भाई मुझको अपना भाव रोग का इलाज कराना है तो फिर दोष नहीं लगता है। लेकिन अगर अपने गुरु के प्रति उसके अंदर ईर्ष्या की भावना है और घमंड के कारण जो ना अगर गुरु को छोड़ देता है तो फिर उसको जो ना बंधन प्राप्त होता है। तो ये कई प्रकार की स्थितियां हैं, तो ऐसे कहा नहीं जा सकता है कि एक नियम हमेशा लागू होगा। इनका प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अगर मरता है तो कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान हो वो शोक जरूर करता है, तो नहीं शोक करना भी चाहिए। अगर वो विद्वान है और वो जानता है कि जो जीव है उसका तो नाश नहीं है, वो जानता है अगर, तो भी शोक करना चाहिए, क्योंकि शोक जो है कर्तव्य है, शिष्टाचार है, शोक करना चाहिए। तो भगवान ने शोक किया इसलिए, यहां तक कि भगवान को पता था कि 5 पांडव मरे नहीं है, लेकिन शोक करने के लिए आए हस्तिनापुर, है कि नहीं। तो एक शिष्टाचार है, शोक करना चाहिए। लेकिन अनुशोचंती, यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ना अनुशोचंती पंडिता, मतलब बार बार शोक नहीं करते हैं कि अपने सब कर्तव्य ही बंद कर दें, है ना। तो इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के जगत गुरु श्री प्रभुपाद के श्री श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा के श्री श्री गोंडताय भगवान के श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के हरे कृष्णा। 28 जनवरी 1973 को प्रभुपाद ने हिलादिनी को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि जैसे जैसे आप अपनी भक्ति में परिपक्व होते जाएंगे वैसे वैसे आप कृष्ण को अधिक से अधिक देखेंगे और उस अधिक से अधिक आप ब्रज की पवित्र भूमि के गुणों को अनुभव करेंगे। 29 जनवरी 1973 को शिला प्रभुपाद ने श्री रुद्र साई को पत्र लिखा, उसमें लिखा
कि ये जो हमारे मंदिर हैं हरे कृष्णा के, ये रेगिस्तान में पियाऊ के समान हैं, जहाँ की बद्ध आत्माओं को, बद्ध जीवों की जो असली सुख की जो इच्छा है उसकी प्यास को ये बुझाने के लिए हैं। 30 जनवरी 1973 को प्रभुपाद ने कलकत्ता में भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जरूर ही भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। 31 जनवरी 1977 में प्रभुपाद ने भुवनेश्वर में प्रवचन दिया और उसमें बताया कि एक मेला था, उसमें एक व्यक्ति जाना चाहता था, इसलिए अपनी वेशभूषा को सजा रहा था, और इस प्रकार से अपने को सजाते सजाते क्या हुआ कि वो मेला ही समाप्त हो गया। तो यही विज्ञान है। ये सब दुष्ट लोग केवल बाधे करते हैं, लेकिन समस्याओं का कुछ भी हल नहीं होता है। आपको पानी की आवश्यकता है तुरंत, हाँ ठीक है, 3 लाख साल के बाद पानी मिलेगा। अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं और हरे कृष्ण का कीर्तन करें तो वर्षा होगी, और यहाँ तक कि जो बंजर भूमि है वो भी उपजाऊ हो जाएगी, और वे इस बात को नहीं जानते हैं और क्या करते हैं, पानी को दूर दूर से मंगा रहे हैं। 1 फरवरी 1973 को प्रभुपाद ने बटू गोपाल को पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने चरित्र में आदर्श बनना चाहिए और तब लोग बहुत प्रभावित होंगे ऐसी शुद्धता से। जो भक्त होता है वो निर्दोष होता है, उसके अंदर कोई कमियां नहीं होती हैं। 2 फरवरी 1968 में प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में प्रवचन दिया और कहा कि क्लियोपात्रा, आपने सुना होगा ग्रीस का इतिहास, वो बहुत सुंदर थी और उसने बड़े बड़े योद्धाओं को जीत लिया, तो कभी कभी जो सौंदर्य है वो बड़े बड़े लोगों को भी बस में कर लेता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि सौंदर्य भगवान को जीत लेगा। भगवान को जीतने के लिए भक्ति है। अगर आप भक्ति में उन्नत हैं तब आप भगवान को जीत सकते हैं, जैसे गोपियां। 3 फरवरी 1970 को प्रभुपाद ने जय गोविंद को पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि जो तुम्हारा जो काम है ये माया है, परंतु तुमको जानना चाहिए कि माया का मतलब होता है भ्रम। जैसे ही कृष्ण भावनामृत का अभाव होता है तो वो माया है, परंतु तुम तो काम कर रहे हो ताकि कृष्ण का जो कार्य है वो और आगे बढ़े, उसमें सहायता हो, इसलिए ये माया नहीं है। जिस किसी वस्तु का कृष्ण भावनामृत में उपयोग होता है तो वही असली त्याग है। 4 फरवरी 1977 को प्रभुपाद ने कलकत्ता में प्रवचन दिया और कहा कि जितना अधिक आप मंदिरों की सफाई करेंगे और जितना अधिक आप भगवान के श्री विग्रहों को सजाएंगे, उतना ही अधिक आपका हृदय शुद्ध होगा और आप आध्यात्मिक रूप से पवित्र होंगे। जो पवित्रता है ये भगवान के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत का मतलब है गंदी चीजें और आध्यात्मिक जगत का मतलब है पवित्रता।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, गौर हरि गौर हरि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जय 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 हो जय हो।
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare